श्रेष्ठ गीत अध्याय एक। आइए हम श्रेष्ठ गीत का अध्ययन करें जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया था। गीतों के इस संग्रह को श्रेष्ठ गीत नाम देकर सुलेमान ये दर्शाना चाहता है कि उसके द्वारा लिखे गए 1005 गीत जो इस संग्रह में रखे गए हैं, ये गीत सर्वोत्तम श्रेणी के हैं। इन श्रेष्ठ गीतों में राजा सुलेमान के द्वारा विचारों की खूबसूरती को दिखाया गया है। सभा उपदेशक की किताब में हमने व्यर्थ ही व्यर्थ एक विषय देखा था। परमेश्वर से अलग संसार वास्तव में व्यर्थ और निरसार है। हमें जो कुछ भी परमेश्वर से हटकर प्राप्त हो वो सब व्यर्थ ही होता है। संसार में सब कुछ पा लेने और परमेश्वर को त्याग देने से जीवन अंत में निराशा से पूर्ण हो जाता है। अब आता है राजा सुलेमान का श्रेष्ठ गीत जिसे राजा सुलेमान ने स्वयं लिखा है। असल में श्रेष्ठ गीत प्रेम गीत की पुस्तक है। कुछ लोग श्रेष्ठ गीत को पश्चिमी संस्कृति के प्रेम गीत मानते हैं, इसलिए उनका कहना है कि बाइबल में श्रेष्ठ गीत का रखा जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों ने श्रेष्ठ गीत को आत्मिकता का प्रतीक मानकर अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त किया है। यहूदी श्रेष्ठ गीत को इसराइल देश के साथ परमेश्वर के एक विशेष रिश्ते का आत्मिक प्रतीक मानते हैं। इस पुस्तक में परमेश्वर को राजा सुलेमान के रूप में और इसराइल को एक पत्नी के रूप में दिखाया गया है। जिस तरह से पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जताते हैं, उसी तरह परमेश्वर अपना प्यार इसराइल के प्रति और इसराइल अपना प्यार परमेश्वर के प्रति जताता है। भविष्यवाणियों में भी अधिकतर हम यही देखते हैं कि परमेश्वर ने इसराइली जाति को एक पत्नी के रूप में संबोधित किया है। यहां परमेश्वर अपना प्यार इसराइली जाति पर प्रकट करता है। परमेश्वर का प्यार अपने लोगों के लिए बहुत ही गहरा है, जैसे कि जवानी के जीवन साथी के लिए। जब वे शुरू में मिले थे तब उनका प्यार बहुत ही गहरा था, परंतु अब उनका वो पहला प्यार कहां गया जो आरंभ में था? परमेश्वर कहता है, उस प्यार को तुमने क्यों छोड़ दिया? किसने तुम्हें दूर कर दिया? इसराइलियों ने अपने हृदयों को परमेश्वर से दूर कर लिया था और वे देवता अर्थात मोलेक, बाल और कनानियों के अन्य देवताओं की पूजा आराधना करने लगे थे। अब परमेश्वर इसके विरुद्ध कहता है, तुमने मुझे भुला दिया है और दूसरा प्रेमी ढूंढ लिया जो तुमको अकेला छोड़ जाएगा। यही कारण है कि यहूदियों के लिए ये गीत संग्रह एक सुंदर आत्मिक तस्वीर बन गया। ये गीत संग्रह परमेश्वर के साथ इसराइल देश के रिश्ते की उपमा देता है, एक विशेष रिश्ता जिसका लाभ इसराइल को परमेश्वर से प्राप्त था। नए नियम में कलीसिया को बार बार मसीह की दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए दुल्हन शब्द कलीसिया का प्रतीक हो गया है। यीशु मसीह जिसकी हम राह देख रहे हैं, वो एक दिन अवश्य आएगा और राज करेगा। इसलिए श्रेष्ठ गीत को कलीसिया के लिए मसीह का प्रेम तथा कलीसिया द्वारा उसका उत्तरवाद मानना भी उचित ही होगा। महान प्रचारक जॉन गिल ने श्रेष्ठ गीत में से 122 उपदेश अपनी कलीसिया को सुनवाए थे। अतः जो लोग आत्मिक रूपकों में प्रचार विषय खोजते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ गीत संग्रह में बहुत सारी सामग्री है। क्लेयरवॉक्स के बर्नार्ड ने केवल पहले अध्याय में से ही अपनी कलीसिया को 62 उपदेश दिए थे। अतः ये पूरी की पूरी किताब उपमाओं और प्रतीकात्मक संदर्भों से भरी हुई है। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो बाइबल के भेदों के अर्थ को समझ पाऊं, परंतु मैं भी इसमें अनेक सुंदर छिपे हुए अर्थों को देखता हूं। आप भी इसमें से एक हिस्सा या विषय लेकर आत्मिक मनन कर सकते हैं। प्रचार का मेरा तरीका ऐसा नहीं है कि मैं एक विषय लेकर उसे आत्मिकता का प्रतीक बना दूं, क्योंकि अनेक अर्थों से भरी हुई एक ही कहानी को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, और वैसे भी श्रेष्ठ गीत के अनेक अनुवाद हैं। श्रेष्ठ गीत के मूल अनुवाद में हम पाते हैं कि एक शूलेम वासी लड़की है जिससे सुलेमान दिल की गहराई से प्यार करने लगता है, और वो भी उसको प्यार करने लगती है। वह उसके प्रति अपने प्रेम और उसकी सुंदरता को अभिव्यक्त करता है। वो युवती भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है। वहां यरूशलेम की पुत्रियां भी खड़ी है जो उस लड़की से सुलेमान के प्रति उसके प्यार के बारे में सवाल करती है, और सुलेमान से उस लड़की के प्रति उसके प्यार के बारे में पूछती है। अब चूंकि ये गीत है, इसलिए आप इसे एक नाटक की तरह प्रस्तुत किया हुआ देखते हैं। आपके सामने सुलेमान खड़ा है और अपनी भारी मधुर आवाज में अपनी दुल्हन के लिए प्यार भरा गीत गा रहा है, और वो लड़की अपनी मधुर ऊंची आवाज में गाकर जवाब दे रही है, आओ मेरे प्रेमी, मेरे बगीचे में आओ और पियो और इसके फलों को चखो। फिर इसमें एक सामूहिक गान है जो महिलाओं का सामूहिक गान है। वे थोड़े थोड़े अंतराल में गाती है, हे मेरे प्राण प्रिय, बता तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराता है और इस वक्त कहां है। इस तरह वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब श्रेष्ठ गीत का एक दूसरा अनुवाद भी है जो मूलभूत तो है परंतु संपूर्ण है। ऐसा अर्थ निर्धारण अंग्रेजी की एम्प्लीफाइड बाइबल में मिलता है। इस संस्करण के अनुसार ये वही सुंदर शूलेम वासी जवान लड़की है जिसके प्यार में सुलेमान पागल हो गया है, और इस युवती को अपने हरम का हिस्सा बनाना चाहता है। सुलेमान के हरम जैसा कोई दूसरा हरम नहीं हुआ। वो अपनी अमीरी, वैभव, उपहारों और सारी दौलत के द्वारा किसी भी तरीके से उसे अपने बड़े हरम का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। वो उसको किसी भी कीमत में ललचाने का प्रयास कर रहा है। ये लड़की दूसरी कुंवारी लड़कियों के साथ हरम में लाई जाती है, और वो उन्हें बताती है कि क्यों वो उसके प्यार का उत्तर नहीं दे रही है। वो बताती है कि उसके पास एक सच्चा प्यार है जो एक चरवाहा है। इसी कारण वो सुलेमान को उसके प्रेम प्रदर्शन का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि उसका दिल किसी और के पास है। उसका चरवाहा प्यार करने वाला है और वो उसी के लिए है। वो सदा उसी को देखती है। यदि श्रेष्ठ गीत का दूसरा अर्थ देखें तो सुलेमान इस कहानी में संसार का प्रतिनिधित्व करता है, और शूलेम वासी स्त्री विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करती है। सुलेमान अर्थात संसार मसीही जनों को उनके चरवाहे अर्थात मसीह से दूर ले जाने के लिए ललचाता है। चरवाहा यीशु मसीह और कलीसिया का अपने चरवाहे यीशु मसीह के साथ गहरा प्रेम है। कलीसिया किसी भी कीमत पर सांसारिक ऐश्वर्य के लालच में पड़कर अपने चरवाहे मसीह यीशु का त्याग नहीं कर सकती, जैसे कि शूलेम वासी युवती। इस प्रकार शायद ये दूसरा अनुवाद है, परंतु यहां एक समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि किसी लिखे हुए भाग हिस्से को अपने शब्दों में ढालना और आत्मिक अर्थ देना, क्योंकि जब आप इस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ते हैं तो आपको दोनों अर्थ ही ठीक लगते हैं, परंतु जहां तक अनुवाद का सवाल है, ये एक दूसरे के एकदम विपरीत है। सुलेमान ही वो व्यक्ति है जिससे वो प्यार करती है, और दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं, या फिर यह कि वो अपने सच्चे प्यार के लिए सुलेमान के प्यार का इनकार करती है। उसका सच्चा प्रेम अपने चरवाहे के लिए है। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद एक। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। श्रेष्ठ गीत का आरंभ गाने से होता है। एक जवान सुंदर शुलेमवासी लड़की है और वो गाती है। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद दो से लेकर चार तक। वो अपनी मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाक मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाक मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। अति प्रिय, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। अब वो स्वयं से बात कर रही है और कहती है। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद पांच और छह। हे यरूशलेम की पुत्रियां, मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सावली हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एथियोपिया की थी, लेकिन वो कहती है। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद छह में आगे लिखा है, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। वो भूरे वर्ण की थी। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद छह में आगे लिखा है, मेरी माता के पुत्र, असल में मेरे सौतेले भाई, मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी अर्थात मेरा अपना रूप की रखवाली नहीं की। मैं लाल या गेहूवे रंग की हूं। और श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद सात। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहां बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट खड़े हुए भटकती फिरूं? राजा के कमरे में लाए जाने पर उसने अपनी प्रारंभिक घोषणा की। वो यरूशलेम की पुत्रियों को अपनी बिखरी अवस्था के बारे में बता रही है, जो उसने दाख की बारी में रहते समय अनुभव किया था। ये कुछ कुछ सिंड्रेला की कहानी की तरह है। उसकी धूर्त और बदमाश बहनें उसे सारा काम कराती थी, जिसके कारण वो अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख पाती थी। अब राजा उसको जवाब देता है। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद आठ। हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो, सवाल है कि तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराती है? हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद आठ से लेकर दस तक। तो भेड़ बकरियों के खुर्रों के चिन्हों पर चल, और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। तेरे गाल केशों की लठों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरों की लड़ों के बीच। वे यरूशलेम की कुवारी पुत्रियां हैं जो कोरस में जवाब देती हैं, हम उसे किनारा या सीमा बनाएंगी। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद 11। हम तेरे लिए चांदनी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। और दुल्हन जवाब देती है, श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद 12 से लेकर 14 तक। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छों के समान है, जो एन गेदी की दाग की बारियों में होता है। मेरा प्रेमी मेरे लिए कपूर या सरू के पेड़ से और दरवाजों से बाहर आती हुई खुशबू तथा एन गदी से आती हुई फूलों की मनमोहक खुशबू के समान है। श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद 15। राजा का जवाब, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। वो उसे उत्तर देती है, श्रेष्ठ गीत अध्याय एक पद 16 और 17। कितने सुंदर हो तुम मेरे प्रियतम, कितने मनमोहक, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार है और हमारी छत की कड़ियां सनोवर है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में प्रेम के नाटक की ये तो शुरुआत है।